मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 4 जून 2019 है और आज के इस afis.com की डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं दीप्ता विश्वास बैरकपुर पश्चिम बंगाल से, सौरभ विश्वास कल्याणी पश्चिम बंगाल से और चेतना वाघड़े बालाघाट मध्य प्रदेश से। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे जीएसपी के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले आइए दूसरी थोड़ी सी खबरों को, जो छोटी खबरें ही हैं लेकिन थोड़ी सी महत्वपूर्ण भी मालूम पड़ रही हैं, उनको देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना कि सरकार ने अपने इस प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वो 3 तलाक पर विधेयक लेकर के आएगी और आपको शायद ये भी मालूम होगा और न्यूज में भी ये चीज बात मेंशन थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो इस वर्ष का चुनावी घोषणा पत्र था उसमें बकायदे सरकार, मतलब पार्टी ने, कहना चाहिए पार्टी ने ये घोषणा की थी कि यदि वह सत्ता में आई तो वो 3 तलाक पर विधेयक लेकर आएगी। 3 तलाक की जो पृष्ठभूमि है वो आप लोगों को बकायदे मालूम होगी क्योंकि ये लंबे समय तक चला आ रहा है। सरकार इसका विधेयक लेकर के भी आई थी लेकिन वो राज्यसभा में पेश नहीं हो सका, इस पर बातचीत नहीं हो सकी। तो अभी 3 तलाक, नो डाउट कि 3 बार तलाक कहने के आधार पर विवाह विच्छेद जो मुस्लिम समुदाय में होता है वो वैध नहीं है, अभी अध्यादेश के माध्यम से चल रहा है लेकिन इस पर बकायदे विधेयक लाया जाना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इस तरह का आदेश है, कानून बनना ही है। फिलहाल सरकार के लिए थोड़ी सी इसमें दिक्कत जाएगी क्योंकि अभी जो पार्टी लोकसभा में बहुमत में आई है यानी कि जिसकी सरकार है, राज्यसभा में अभी उसका बहुमत नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे मामले होते हैं जब जो विपक्ष में है उन्हें भी सरकार के की जो नीतियां हैं उनका समर्थन करना पड़ता है। अभी देखते हैं कि क्या स्थिति होती है। ये भी कहा जाता है फ्रेंड्स, अभी जो चुनाव हुए थे कि उसमें जो मुस्लिम मतदाता थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक पक्ष में महिलाएं थी और उनके बारे में ये माना जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना मतदान किया है। उसका कारण यही है कि 3 तलाक विरोधी विधेयक लाना, क्योंकि इससे उन्हें अपनी सुरक्षा का एहसास होता है। और जो पुरुष मतदाता थे वो अलग अलग पार्टियों में उन्होंने अपने अपने हिसाब से मतदान किया है, लेकिन जहां तक कहा जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने उतना समर्थन नहीं दिया है, लेकिन यह भी एक तरह से कह लीजिए अनुमान पर आधारित ही कथन फिलहाल है। इस खासकर 3 तलाक वाले विधेयक में आप बड़े आराम से डेमोक्रेसी को देख सकते हैं, डेमोक्रेसी को समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब जन चेतना जागृत होती है और जब जनता सामूहिक रूप से किसी की मांग करने लगती है तो सरकार को उसे स्वीकार करना पड़ता है और मूलतः यही तो डेमोक्रेसी की आत्मा है। अब आप देखिए कि निर्भया कांड जब देश में हुआ और किस तरीके से फिर मांग की जाने लगी, पूरे देश में एक आंदोलन जैसा छिड़ा, तो अंततः सरकार को बकायदे जो हमारा नाबालिग कानून है उसमें बदलाव लाने पड़े और जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनके लिए कठिन सजाओं की व्यवस्था करनी पड़ी। और आप पाएंगे कि दुष्कर्म की जहां भी मामले दर्ज होते हैं न्यायालय में तो उनके बहुत जल्दी फैसले भी आते हैं। तो देखिए ये जनता का दबाव है, यही जनता की शक्ति है और यही रियल में सच्चे अर्थों में डेमोक्रेसी भी है। तो दूसरी खबर के रूप में त्रिभाषा फार्मूले के बारे में आप खबरें पढ़ रहे होंगे। नई शिक्षा नीति आनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बहुत जल्दी ही मतलब वो पब्लिक इस पर डिस्कस करेगी और सरकार इस पर निर्णय लेगी। हालांकि पिछली सरकार में ही संभावना व्यक्त की जा रही थी कि नई शिक्षा नीति आ जाएगी लेकिन वह नहीं आ पा रही है, नहीं आ पाई। अभी जो त्रिभाषा फार्मूला पर जो तमिलनाडु में विरोध हो रहा है उसका केंद्र क्या है, उन्हें यह लग रहा है कि सरकार उनके ऊपर हिंदी भाषा लादना चाह रही है। जब हम त्रिभाषा फार्मूला कहते हैं तो उसका मतलब है कि आपको 3 भाषाएं इनिशियल स्टेज पर सीखनी होती हैं, उसमें एक अंग्रेजी है, एक हिंदी है और दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि तमिलनाडु की बात लें जो अभी इस त्रिभाषा फार्मूला का विरोध कर रहा है, तो उनकी एक तो अपनी भाषा होगी ही होगी, राइट, और दूसरी जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी और तीसरी भाषा होगी वो हिंदी होगी। तो यहां वो हिंदी को थोपने की बात समझ रहे हैं कि हिंदी उनके ऊपर अनावश्यक रूप से थोपी जा रही है। मित्रों ये जो तमिलनाडु में हिंदी का विरोध है वो अभी की ही बात नहीं है, बहुत पहले से ये विरोध हो रहा है। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे आजादी के बाद का, तो उसमें भाषा समस्या पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब दक्षिण भारत में बहुत जबरदस्त रूप से हिंदी का विरोध होने लगा, तो उसके विरोध में उत्तर भारत में जबरदस्त आंदोलन चल निकला हिंदी के पक्ष में। और उस समय हम लोग तो छोटे छोटे थे, लेकिन होता यह था कि अगर कोई किसी मान लीजिए कि शॉप है या कंपनी है, उसका बोर्ड अंग्रेजी में है, तो उसको पोत दिया जाता था। जैसे आपकी गाड़ी के जो नंबर प्लेट होते हैं, अगर वो इंग्लिश में है तो उन्हें पोत दिया जाता था। मतलब इंग्लिश का इतना विरोध हो रहा था, मतलब साउथ में जो हिंदी का विरोध था उसकी प्रतिक्रिया में नॉर्थ में अंग्रेजी विरोध आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। कुछ इस तरह की झलकियां अब तमिलनाडु में दिखाई दे रही हैं। अब इसका कारण जो भी हो, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि क्या है। सरकार ने अभी यही कहा है कि नहीं, उनके ऊपर हिंदी लादे जाने की कोई ऐसी बात नहीं है कि हिंदी लादी जा रही है। नई शिक्षा नीति जब बनेगी, फाइनल होगी, उस समय क्या स्थिति होती है वो अब समय बताएगा। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि हिंदी की जो स्थिति है, उसकी जो उपयोगिता है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बेहतर होगा कि आप सब इस पर अपना व्यू तैयार कर लें। आपकी अपनी एक दृष्टि होनी चाहिए, और अभी अखबारों में डेफिनेटली इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं, और वह है GSP। देखिए, GSP का क्या मतलब है? पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता दूं, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस, जनरलाइज सिस्टम का मतलब हो गया कि एक सामान्य सी प्रणाली आप बना रहे हैं, एक जनरल सिस्टम बना रहे हैं। किस चीज के लिए जनरल सिस्टम बना रहे हैं? प्रिफरेंसेस के लिए, यानी कि आप किसी को प्रिफरेंस देना चाह रहे हैं, किसी को प्रीफर करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसे दूसरों की तुलना में वरीयता देना चाह रहे हैं, है ना, उसे कुछ स्पेशल, आप यूं कह लीजिए कि सुविधा देना चाह रहे हैं। यही तो होगा ना, प्रिफरेंसेस, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस, राइट। अब ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस देखिए क्या है। इनफैक्ट ये एक तरह से टैक्स की प्रणाली है। टैक्स की प्रणाली, किस तरह के टैक्स की प्रणाली है? आप यूं कह लीजिए कि जो प्रिफरेंशियल जो टैरिफ सिस्टम होगा, यानी कि प्रिफरेंशियल टैरिफ सिस्टम, यानी कि कर लगाने की एक ऐसी वरीयता प्रणाली जिसमें आप कुछ देशों को या किसी एक देशों को बकायदे टैक्स देने में कुछ प्रिफरेंस दे रहे हैं, टैक्स में छूट देने में प्रेफरेंस दे रहे हैं। यानी कि आपके यहां जो भी सामान आ रहा है दूसरे देशों से, तो आप उस पर टैक्सेस लगाते हैं, है ना, आयात शुल्क लगाते हैं। आइए मैं और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी वजह से आप कुछ देशों को इसकी छूट दे देते हैं कि ठीक है भाई, आप अपना सामान हमारे देश में भेजिए, आप जो सामान हमारे देश में भेजेंगे उस पर हम आप के सामान पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। अब आप देखिए कि जब उस देश का सामान जिस पर आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं दूसरे देश में पहुंचेगा, तब उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ है, तो वो सामान उस देश के बाजार में सस्ती कीमत पर बिकेगा। ये अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर के है। अब आप कह लीजिए कि किसके सामान पर टैक्स नहीं लगना है? भारत। कौन सा देश नहीं लगा रहा है? अमेरिका। अब इस तरह से आप समझिए, अमेरिका ने कुछ देशों के लिए इस सिस्टम को अपनाया था, और खासकर ये जो देश थे वो डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्री थे। क्योंकि ये देश अभी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, लीस्ट डेवलप्ड है, मतलब बहुत कम इनका विकास हो पाया है, तो अमेरिका ने एक सिस्टम किया कि भाई अगर हम इन देशों के सामान को अपने बाजार में बिना टैक्स के आने देंगे तो इनका थोड़ा सा निर्यात बढ़ेगा, इनका उत्पादन बढ़ेगा, तो इससे इनको मदद मिलेगी। इसी के तहत उसने जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस लागू किया था, उसमें भारत भी था। अभी अमेरिका ने इस सिस्टम से भारत को बाहर कर दिया, इसीलिए हम इस विषय पर बात भी कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या है कि भारत से लगभग 2000 वस्तुएं अमेरिकी बाजार में जाती थी, और इन 2000 वस्तुओं पर अमेरिका टैक्स नहीं लगाता था, तो वो अमेरिका के बाजार में सस्ती कीमत पर चीजें बिक जाती थी, और इससे भारत का निर्यात काफी अधिक हो जाता था, और भारत के उत्पादन को भी, मतलब आप कह लीजिए कि एक गति मिलती थी। अब इन वस्तुओं का बिना टैक्स के अमेरिकी बाजार में जाना बंद हो जाएगा। अगर अमेरिका को इनकी जरूरत होगी तो बकायदे इन पर वो टैक्स लगाएगा, और जब टैक्स लगाएगा तो अमेरिकी बाजार में ये सामान थोड़े से महंगी हो जाएंगी। तो इस रूप में आप कह लीजिए कि ये भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में एक थोड़ी सी खटास पैदा करने वाली घटना है, लेकिन भारत इसके बारे में बहुत ही एक संतुलित दृष्टिकोण का परिचय दे रहा है। भारत ने इसके ऊपर कोई बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। उसका कारण है मित्रों कि अभी भी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो एक इस घटना की वजह से ही हम अपने संबंध अमेरिका से खराब नहीं कर सकते। इससे पहले भी आप देखिए कि भारत अमेरिका ने जब ईरान पर प्रतिबंध लगाए तो उससे भारत को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब भारत ईरान से तेल नहीं मंगा पाएगा, जबकि ईरान से हमें तेल सस्ते में मिलता था, कुछ और भी हमें छूट मिलती थी। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो भारत के लिए तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यह भी अमेरिका के कारण हुआ है, लेकिन अब केवल इन दो कारणों से ही हम अमेरिका से अपने संबंध खराब करने की, आप कह लीजिए कि मूर्खता नहीं कर सकते या गलती नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जो दूसरे व्यापार के क्षेत्र हैं उस पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ये है GSP सिस्टम, और इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के सिस्टम के बारे में बकायदे पूछ लिया जाता है, और कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि किस देश ने इस सिस्टम से भारत को बाहर किया था। जैसा कि अभी 2019 के पेपर में आपको एक दो क्वेश्चन इस पैटर्न के दिखाई देंगे। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। आप सबसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और वो ये फ्रेंड्स कि 2019 के प्री के एग्जाम हो चुके हैं। मेरे पास मेल आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट की बहुत ही जायज रिक्वेस्ट है कि सर आप 2019 के पेपर का विश्लेषण हम सबके लिए कीजिए। मैं डेफिनेटली करूंगा, लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से करूंगा ताकि मैं बहुत ही ठोस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आप सबके सामने बातें रख सकूं। लेकिन मैं करूंगा, उसके लिए बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। जैसे कि आज मैंने जो जीएसपी के विषय को लिया है, यह इनफैक्ट 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आधार बनाकर के ही इस टॉपिक को मैंने इस रूप में लिया है। अदरवाइज मैं सामान्य तरीके से इसकी चर्चा करके इसे छोड़ भी सकता था, राइट फ्रेंड्स। तो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आज उन क्लिपिंग्स की संख्या काफी है। आप सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जरूरत के हिसाब से, यानी कि आप सब उसे देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं मोहसिना बख्शी, विकास सिंह, राजकुमार लड्ढा फरीदाबाद हरियाणा से, वेंकटेश पटेल हिम्मतनगर गुजरात से, रविकांत शुक्ल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, लव कुमार इंदौर से, शीतल थांकी और प्रियंका अहिरे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों इससे पहले कि मैं आप सबसे इजाजत लूं, एक सूचना है। सूचना यह है कि कल गजटेड हॉलीडे है, इसलिए कल डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। परसों आप सबसे फिर मुलाकात होगी, और फिर हम ढेर सारे विषयों पर, जरूरी विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।